نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج ایک ہی دن میں دوسری بار بات کہنے اور سننے کا موقع دیا کیونکہ آپ میں سے کچھ ساتھی مجھے دکھ رہے ہیں کہ جو صبح میں بھی تھے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی محفلوں کا حق ادا کرتے ہوئے اور حقیقت میں دل میں عاجزی کے جذبات رکھتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بہت ساری باتیں سنوائے گا انشاءاللہ آج ہم کوئی بہت لمبی چوڑی بات اب نہیں کریں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک یہ گیدرنگ ہے اور اس میں بہت زیادہ سننا یا اس کے لیے بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا ایک بہت چھوٹی بڑی خوبصورت سی آیت ہے جو میرا خیال ہے اور میرے گمان کے مطابق کہ سننے والے بہت سارے لوگوں کو زبانی تک یاد ہو چکی ہوں گی ہم اتنی دفعہ ان آیتوں کو سن اور سنا چکے اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے اللہ کے ساتھ بندے کے معاملے کی آیت ہے 111 سورۃ توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سودے کی بات کی ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بات کا اقرار کرتے ہیں اور وہ کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہی معاملہ جو کلمہ پڑھ کر ایک انسان کا اللہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت اور ایک سودے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشترى بے شک اللہ نے خرید لی ہیں کیا مومنوں سے ان کی جانیں اور مال میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں آپ کون سی چیز بیچتے ہیں جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے ظاہری بات ہے گھڑی آپ کی ہے آپ بیچ دیجئے آپ نہ بیچیں آپ کی مرضی ہے لیکن کیا ہم میں سے کوئی اس وقت یہاں آیا ہوا فرح کے گھر میں رکھے ہوئے اس گلدان کو بیچ سکتا ہے کیسے بیچیں گے یہ تو ہمارا ہی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے وہ چیز خرید رہا ہے جو ہماری اپنی ہی نہیں ہے بڑا باریک نقطہ ہے اگر آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ بیچی اور خریدی تو وہ چیز جاتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو جبکہ ہم صبح و شام اس بات کی دلیلیں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لیتے ہیں کہ نہ یہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا نہ آئے اپنی مرضی سے نہ جاتے ہیں اپنی مرضی سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس وقت ہم لوگوں کی بے بسی دیکھتے ہیں کہ سارے گھر والے ارد گرد جمع ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں بعض دفعہ نبضیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں بچتے تو اس کا مطلب کہ یہ جان ہماری نہیں ہے اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ پیدا نہ ہو بہت سارے پریکاشنز لیتے ہیں کہ ہمیں اب مزید بچے نہیں چاہیے لیکن پھر بھی بچہ آ جاتا ہے اس کا مطلب کہ زندگی پہ بھی ہمارا اختیار نہیں تو نہ جان ہماری نہ موت ہماری اللہ نے کہا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین دو چیزیں اموالہم وانفسہم اگر ہم انفسہم کو دیکھیں تو انسان کا نفس ہے نفس کے اندر کیا کچھ آتا ہے جو لوگ آج صبح تھے ان کو تو یہ لفظ رٹ چکا ہوگا کیونکہ آج ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹے بات کی ہے نفس کے اوپر تو نفس کے اندر انسان کی جان بھی آتی ہے اس کی روح بھی آتی ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان एक जान और एक रूह का, एक बदन और एक रूह का। तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स खरीदे हैं, तो इसमें क्या खरीदा है? अगर आप सारी बातों को एक जगह करके सिर्फ एक लफ्ज में समेट लें, तो अल्लाह ताला ने हमसे हमारा इख्तियार खरीदा। न जान मेरी, न माल मेरा, न औलाद मेरी, न बच्चे मेरे, न शोहर मेरा। क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं ले सकती। ये अलग बात है कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे और मुझे वो चीज़ दे दे जो मैं मांगूँ, लेकिन मुशाहदा इस बात का गवाह है कि ये चीज़ें अल्लाह की मर्जी से मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ है जो मेरे पास है, जो अल्लाह ने मुझे भी दी और आपको भी दी, और वो सूरत अलहज़ाब की आखिरी आयतों में इन अरदनल अमानता, अल्लाह ताला कहते हैं बेशक हमने अमानत को पहाड़ों पर पेश किया और वो डर गए कि हम उसको लें, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। सब ने इनकार किया लेकिन इंसान ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि इंसान बहुत सतही सोच रखता है। तो एक चीज जो इस दुनिया में इंसान के पास है वो इंसान का इरादा है, इख्तियार। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, चाहता तो हमें मुख्तारे कुल कर देता, पूछता बताओ जाना चाहते हो दुनिया में, चले आते, पूरा इख्तियार होता, बटन दबाते दुनिया में आ जाते, बटन दबाते दुनिया से चले जाते। अल्लाह ताला हमसे पूछता कि हमारे इख्तियार में छोड़ देता कितना माल चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, मुमकिन था ना। लेकिन ये सारे मेन कंट्रोल अल्लाह ताला ने अपने पास रखे। और सूरत फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ, ए लोगो तुम फकीर हो, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह ताला तारीफ किया गया और बुजुर्गी वाला है, बेनियास है। तो पता क्या चला कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से आता है और इस बात का अपनी रूहों के जरिए इकरार करवा के आता है कि दुनिया में जाऊंगा तो अल्लाह तुझे एक मानूंगा। सूरत अलाराफ में अल्लाह ताला ने बहुत खोल कर वादे अलस को बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और पुकार के पूछा कि बताओ अलस तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। असल में ये वही मुआहदा था जिसको यहाँ एक सौदे के तौर पे पेश कर दिया। हम में से हर एक की रूह ये सब करके आई है कि अल्लाह इस दुनिया में जाकर तुझे ही रब मानूंगी। अगर आज हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये कोई मां नहीं सिखाती, हमारी तो माँ ने सिखा दिया। अगर कोई बच्चा किसी जंगल में भी पैदा कर दिया जाता और किसी सहरा में जहां कोई उसको ना मिलता, तो उस बच्चे को उसकी फितरत पुकारती कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहेंगे इसकी कोई दलील है, तो इसकी दलील में आप उन लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए जो कि इस्लाम की तरफ अपने शऊर से कन्वर्ट होते हैं। वो कहते हैं कोई खास वक्त होता है जब उनकी जुबान से कोई बात निकलती है और उनको अल्लाह की पहचान हो जाती है। तो पता क्या चला कि अल्लाह की पहचान तो हम अपने साथ लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया लेकिन एक चीज जो थी वो देकर कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो या ना करो। और वो क्या है कि इंसान को चॉइस दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फरिश्तों के पास नहीं है, उनको इबादत करनी है। ला यासून मामरुल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है वो उससे हटते नहीं है, रुगरदानी नहीं करते। इसी तरफ देखिए कि हमारे जिस्म के कुछ आजा ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने चॉइस दी है, कुछ को नहीं दी। मिसाल देती हूं आपको, आंखों को चॉइस बिल्कुल दी है। हराम सामने आ गया, आंखें बंद कर लें या खोल के देख लें, बिल्कुल चॉइस है आपकी। कानों को चॉइस दी है अल्लाह ने, आपके कान मौजूद है, आपके पास कोई नागवार चीज, कोई नाफरमानी की चीज आई, आप उंगली डाल लीजिए, कान बंद हो जाएंगे। आप बोलना चाहते हैं, आपका दिल चाहता है आप बोलें, आप ना चाहें तो ना बोलें। लेकिन कुछ ऐसा ऐसे बस हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेदे का बटन हमारे हाथ में नहीं है, जिगर फेफड़े पूरा अंदर का सिस्टम जो है। और आप फील करेंगे सिर्फ फाइव सेंसेस जिनका ताल्लुक इंसान के शऊर के साथ है, देखना सुनना इन्नर सम वल वसर वल फुआदा, यानी वो चीजें जो रिसेप्टर्स हैं जो हिदायत को जज्ब करते हैं, उनके अलावा बाकी सारे आजा भी हमारे हमारे बस में नहीं है। सिर्फ कानों आंखों हाथों को क्यों इन चीजों को रखा, ताकि तुम देखो क्या करते हो, देखना चाहो देख लो, बंद करना चाहो बंद कर लो। ये असल में अल्लाह ताला ने हमें एक चॉइस दी थी और अब कहा कि मैंने ये देने के बाद भी उससे खरीदने का फैसला कर लिया। कभी आपने कोई ऐसा खरीदार देखा कि पहले आपको कोई चीज दे, यानी आप अपने ही बच्चे को एक सेलफोन लेकर दें, फिर उसके बाद कहें कि लाओ अब ये मुझे वापिस बेच दो और अब तुम्हें मैं इसकी कीमत मुंह मांगी दूंगा। नहीं करते हम ऐसा, हम कहते मैंने ही तो दी थी, दे दो वापस, फिर दे दूंगी। यानी जिसको हमने कोई चीज दी होती है, अगले बंदे का कोई सवाल ही नहीं होता कि वो इनकार कर सकें कि मैं ये चीज वापस करता हूं कि नहीं करता। लेकिन ये अल्लाह सुबहान तआला की कितनी बड़ी रहमत है। पहले तो सिर्फ इस शऊर को सामने रखिए कि उसने हमें दिया क्या कुछ है। अल्लाह तआला कहते हैं, वाइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तुम गिन नहीं सकते। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाए, हम अपने जिस्म ही की नेमतों को नहीं गिन सकते। तो सवाल पैदा होता है कि जब एक बंदे को रब इतना कुछ दे और बाद में कहे कि लाओ अब इन चीजों को मेरे कहने पे इस्तेमाल करो, मेरी मर्जी से इनको चूज करो, तो क्या एक इंसान ये अकलमंदी का सौदा करता है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को अपनी मर्जी से करे कि नहीं नहीं मैंने नहीं देना। हम उस शख्स को कितना बकील कहेंगे, हमने खुद उसको गाड़ी दी कि रख लो इस्तेमाल कर लो, बाद में कहे जरा देना चाबी, तो कहेगा क्यों दूं, क्या है, भाग जाओ। मेरा ले बाप बेटे में भी ये ताल्लुक हो तो बेटे के बाप खिलाफ हो जाएगा कि ये क्या बात है, मैंने तुम्हें लेके दिया और आज इस गाड़ी को तुम मेरे हुक्म पे नहीं निकाल रहे। बाप कह दे जाओ रात को दूध ले आओ, और बेटा कह नहीं मैंने नहीं जाना, तो बाप कहेगा कि मैंने इसको गाड़ी क्यों दी। सोचा जाए तो बीसियों मिसालें हमें इस किस्म की मिलती हैं कि हम दुनिया में जब किसी को कोई चीज दे देते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी से इस्तेमाल करे। तो क्या अगर अल्लाह सुबहान तआला ने हमें हमारी जाने, फिर जान के अंदर वक्त, जान के अंदर हमारी सोचे, हमारी स्किल्स, अनफुस नफ्स में सब कुछ है ना, ये सब कुछ अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अगर मेरे ही हाथों वापस बेच दो तो मैं इसको अनमोल कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हाथी, जिंदा हाथी कितने का, लाख का, और मुर्दा हाथी 1.25 लाख का। हमारा हाल तो ये हो गया, कटे पटे जिस्म की कोई कदर नहीं होती। अल्लाह कहते हैं फयक्तुलून व युक्तलून, तुम मेरे रास्ते में कट के तो देखो, तुम्हारे मुर्दा जिस्म की इतनी कीमत डाल दूंगा कि तुम्हें अजाब कब्र से बचा दूंगा, तुम्हें तो मुराबित कर दूंगा, तुम्हें तो मरते ही जन्नत में पहुंचा दूंगा, तुम्हें तो अर्श के नीचे कंदीलों में सुला दूंगा। कोई है इससे ज्यादा कदर करने वाला? आप अपनी दोस्त की मदद कर रही हैं और आपकी उंगली पे जख्म आ जाए या छुरी लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपकी दोस्त क्या कर देगी, बैंडेज लगा देगी, पट्टी कर देगी, डॉक्टर पे ले जाएगी, क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा सॉरी कर देगी, रिग्रेट फील करेगी, लेकिन वो आपकी उस उंगली के बदले में आपको कोई सोने चांदी में नहीं तोल देगी। अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में कटते मरते हो तो मैं तुम्हारी जान को किस तरह से खरीदूंगा कि तुम आज इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असल बात है कि तुम अपनी जान इस मेरे रास्ते में लगा के तो देखो। अब आप देखिए कि एक तरफ तो अल्लाह सुबहान तआला के इतने वादे हैं, लेकिन आइए जरा इंसानों की हमाकत देखिए। देखिए कि अल्लाह की जात जो है ना वो बड़ी नुकता नवाज है। हमें अल्लाह से लेना नहीं आता, अल्लाह हमें देना चाहता है, हमें लेना नहीं आता। अल्लाह ताला कहते आओ मैं तुम्हें खरीदता हूं। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल बस मैंने आप आज के साथ शेयर करनी है, उसको सोचते जाइए और एंड पे देख लीजिएगा कि मैं इनमें से कैसी हूं। आप में से किस हर एक को कुछ ना कुछ शॉपिंग का एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। हम खवातीन है, जरूरत के लिए, शौक के लिए, आदत के लिए बाजार में जाते ही हैं। आप देखिए कि कुछ सिस्टर्स कैसी होती हैं, बाजार में गई, जो ही उतरे गाड़ी से, जो सबसे अच्छी दुकान दिखी सामने, घुसे, जो सबसे अच्छी चीज मिली एकदम बस पसंद किया, पैसे दिए और लेके आ गए। अब आप देखिए जो ही उसने अपनी जल्दबाजी या जोश या जज्बे में वो चीज खरीद ली, अब उस दुकान से निकली तो अगली में गई, क्या देखा, उससे भी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन लगा हुआ है। कीमत पूछी तो उससे कोई 10% कम भी थी। अब क्या कहते हैं, ओहो फिर वापस जाएंगे, वो कहेगा नहीं जी आप पढ़ लीजिए, चीजें वापस नहीं होंगी। एक दूसरा इंसान होता है, वो कहता है नहीं पहली दुकान से नहीं लेना, पहले जो भी वक्त है उसके मुताबिक एक चक्कर लगा लो, इधर उधर देख लो, फिर सब में से जो चीज सूटेबल है, जो ज्यादा अच्छी है, निस्बतन आसान सस्ती है और मेरे मुताबिक है, मैं वो ले लूं। ये दोनों बातें हमें समझ आती है ना। बस इस चीज को सामने रखिएगा कि अल्लाह ने हमें कहा आओ मैं तुमको खरीदता हूं, लेकिन लोग तीन किस्मों में बट जाते हैं। कुछ बहुत बेसब्रे होते हैं। पहली किस्म के लोग क्या होते हैं कि वो खुद को खुद के हाथों बेच देते हैं, सेल्फ वर्शिपर। ये कौन लोग होते हैं, क्रिमिनल्स, सुस्त किस्म के लोग, मनमौजी लोग, शराबी, पापी, खराबियां करने वाले। वो कहते हैं जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं जीऊंगा, इट्स माय स्टाइल, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, आप मुझे क्या करें। बाज दफा लोग दूसरों की नजरों से भी बेन्याज हुए होते हैं, वो कहते हैं आई लव यू दैट्स आई वॉन्ट, मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे देख के क्या कह रहे हैं। जानवरों वाली हरकतें इंसान दूसरों के सामने बाज दफा करता है क्योंकि नफ्स का पुजारी, जैसा चाहो जियो, जो चाहो खाओ, जो चाहो बोलो। ये स्टाइल आज हमारे इर्द गिर्द बहुत आम है। ईट ड्रिंक बी मैरी, ये वो लोग होते हैं जो खुद के हाथों बिकते हैं, इनको सबसे ज्यादा अपना आप प्यारा होता है, यही है जिसको सूरह फुरकान में अल्लाह ताला कहते हैं अफराई तो मन इत्तखज इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी नफ्स को, अपनी हवा को, अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया, और ये वही है जो मनचाही जिंदगी बसर करते हैं, उनको कतन इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि लोग हमें क्या कहते हैं, अल्लाह तो बहुत दूर की बात है, ये खुद के हाथों बिक गए। आप कह लीजिए कि इन्होंने तो खुद को बैंकरप्ट कर लिया। एक इससे ऊपर दूसरे दर्जा है, वो कौन लोग होते हैं जो खुद को लोगों के हाथ बेच देते हैं, खुद से तो बचे नहीं, नहीं नहीं, सोच के काम करना है, मेरा फायदा नहीं, मेरा नुकसान है नहीं, लेकिन वो निकले खुद को लेकर और लोगों के हाथ बेच गए, बिक गए। ये कौन है? पीपल प्लीजर। पहले कौन थे? सेल्फ प्लीजर। मेरा दिल चाह रहा है, मैं खाती रहूं खाती रहूं, मुझे अच्छा लग रहा है, शुगर है तो होती रहेगी, हार्ट अटैक होगा तो होता रहना, वो खुद को हर वक्त खुश रखते हैं। हम इस पे रुके एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं अगर चाहें कि क्या मैं ऐसी तो नहीं हूं। बात सब तो हम नेकियों के भी सिर्फ वही काम करते हैं जिसको हमारा दिल चाह रहा होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक कॉल है, फरमाया करती थी कि जिस वक्त जो चीज चाहे वो खा लेना, होता है ना इस वक्त क्या खाऊं, हम तो बिस्तर से उठ के बैठ जाते हैं, अगर हमारा दिल चाहे पकौड़े बनाने को हम फौरन बनाने पड़ जाते हैं, लेने को बाजार से दिल चाहा फौरन गाड़ी निकाली ले ली। वो कहती हैं कि जिस वक्त जो चाहे वो खा लेना, ये भी इसराफ है। और आज देखिए जितने रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अल्लाह की नेमतें ज्यादा हैं, ना सिर्फ ये कि हम खुद इस पे बिगड़े, हमने अपनी बच्चों को भी इसकी आदत डाल दी। एक टेबल पे तीन किस्म के खाने हैं क्योंकि तीन बैठे हुए, और जो घर का खाना है वो सिर्फ अम्मा और अब्बा खाएंगे, पक गया तो वो दो चार दिन खाएं, बच्चों को वो पसंद ही नहीं, हमने तो खुद उनको बिगाड़ दिया। हम तो खुद कह रहे होते ये नहीं खाएंगे घर का खाना, ये नहीं खाते देसी खाना, क्यों? हमने उनकी मिन्नतें करके, हमने बचपन से उनसे पूछा क्या खाओगे क्या पिलाओगे, हमारी तरबियत में, क्योंकि आजकल वो ट्रेनिंग सेशन करवा के आई हूँ पेरेंटिंग का, हर चीज में मुझे अपने नक्स दिखते हैं कि हमने अपने बच्चों को कैसे शुरू से खराब किया, हमने उनको बिगाड़ा, शुरू शुरू से उनकी मर्जियां पूछी। आज अगर आप उनको रिश्ता पेश करें वो ना पसंद करें तो आपको इसमें हैरत की क्या बात है? कल तो वो आपकी पसंद का खाना नहीं खाते थे, कल तो आपकी पसंद के वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो ये तो शादी तो एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो एक स्टाइल क्या है जिंदगी बसर करने का, कि जिसमें हम लोगों को सेल्फ वर्शिपर बना देते हैं, सेल्फ प्लीजर है। दूसरी किस्म के जो लोग हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, जैसा लोग चाहें वैसा जियो, जैसा देश वैसा भेस, लोग क्या कहेंगे, ये पीपल प्लीजर होते हैं। जिनकी जिंदगी किस मरकज पे घूमती है? लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या पहनते, व्हाट इज इन, फैशन में क्या है, रिवाज में क्या है, क्या काम करने से लोगों में मेरी इज्जत होगी, लोग 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 लोग। बच्चों को भी यही कहते हैं, बच्चों कमरा साफ कर लो मेहमान आने वाले, अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगी, इस तरह के जुमले हम बोलते हैं ना नासमझी में। तो ये एक दूसरा स्टाइल है, ये पूरी जिंदगी इस बात पे गुजार देते हैं कि लोगों को खुश करना है। इनको पता है नमाज का वक्त है, इनको पता है नमाज फर्ज है, नहीं पढ़ी तो मेरी नमाज फौत हो जाएगी, डेड बॉडी आ जाएगी मेरे घर नमाज की, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि लोग क्या कहेंगे, मैं वहां खड़ा नमाज पढ़ रहा था। ये स्कूल्स में नमाज नहीं पढ़ते, ये एयरपोर्ट्स में नमाज नहीं पढ़ते, ये जॉब पे नहीं पढ़ते, इनको पता है इनकी मगरिब कजा होगी, इनके बीसियों रास्ते में जगह है खुली जहां खड़े होकर नमाज पढ़े, सिर्फ लोगों के डर से ये नमाज नहीं पढ़ते। इनको पता है कि हिजाब और इस्लामी अटायर जो है ये हमारी सिक्योरिटी है, इनको पता है कि जब कोई मुझे इस ड्रेस में देखता है तो कोई लड़का मुझसे गलत उम्मीद नहीं रखता, इनको सारे बेनिफिट्स पता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से अपना हाल उलिया नहीं चेंज करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मुझे कहेंगे ये मुस्लिम है, पीयर प्रेशर में आने वाले ये लोग हैं। इनको पता है कि शादी की बेकार रस्में निरा बेकार पैसे का जिया है, इनको पता है कि मेहंदी ओपटन पीला जोड़ा नीला जोड़ा लाल जोड़ा लाखों का एक एक दुल्हन का जोड़ा इज वर्थलेस, इनको पता है 3 लाख का जोड़ा दुल्हन का बेवकूफी है, सिर्फ इसलिए फिर भी बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये साथ मुंह से बातें भी करते जाएंगे लोगों को, लेकिन फिर मजबूर होंगे क्या, चलो ना बे की तो मौका है, अब हम क्यों कैसा बने, सबको बातें करेंगे लेकिन अपने घर मौका आएगा ये फिर वही काम करेंगे। आप इनकी जिंदगी में देखिए जरूरत नहीं होती, ये अपने लोगों को इतना बड़ा बनाते, इनको पता अल्लाह नाराज होगा, कहते खैर अल्लाह को मना लेंगे, अल्लाह कौन सी बड़ी बात है उसको तो मनाएंगे। अब इनकी जिंदगी का मरकज और महवर कौन बना? लोग बने। इसमें आप देखिए कि ये भी एक पूरा लाइफस्टाइल है, पहनना खाना पीना ओढ़ना, बाज दफा खुद को वो चीज कंफर्टेबल लगी नहीं रही होती लेकिन इस सोच से कि लोगों को ये अच्छी लगेगी, बाज दफा वो चीज जचती नहीं फपती नहीं, घर की वो सेटिंग, वो रिवाज, वो तरीका सूट नहीं करता, दिन में 4 दफा ठोकर लगेगी, लेकिन कहते हैं क्या करें, बस फैशन है, इसी तरह से करना है क्योंकि लोगों को ये अच्छा लगेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये फिर बस दफा खुद को भी खुश नहीं रखते लेकिन लोगों को खुश करते हैं। तो क्या लोग इनसे खुश हो जाते हैं? क्या लोग इनसे खुश होते हैं? कभी खुश नहीं होते। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। जो एक रब को मना लेता है ना, सब उससे मन जाते हैं, और जो लोगों को खुश करना चाहता है, लोग उससे कभी खुश नहीं होंगे। ये फितरत का असूल है। ऐसे लोग जो है ना, बिल आखिर इनकी पहचान क्या है? अक्सर ये अपने आप को लोगों की नजरों से देख रहे होते हैं। अच्छा मैं कैसी लग रही थी, अच्छा मैं ठीक लग रही हूँ, कहीं जाएंगे भी तो बार बार लोगों से पूछेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे मैं ठीक लग रही हूँ, थोड़ी देर बाद शीशा निकाल के देख लेंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप को जरा जाके सेट करेंगे क्योंकि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। इनका गम हर वक्त लोग होते हैं। घर में इनका अपने बच्चों से बात करने का स्टाइल, और कोई मेहमान घर में आ जाए तो बिल्कुल मेहमान फर्क हो जाएगा। बहू को हो सकता है सारा दिन कोसने देते रहे, और जब कोई घर में दूसरा बाहर से आ जाए तो उसके सामने बहू को बहुत लाड प्यार करते हुए दिखेंगे। हो सकता है इन्होंने कभी अपनी सास को एक मुट्ठी ना भरी होगी, जो ही कोई दूसरा आएगा तो ये अपनी सास के आगे पीछे फिरने लग जाएंगे। अब ये क्या है, ये किस्म का दिखावा और रियाकारी आ जाती है। लोग खुश नहीं हुए, लोगों ने कुछ नहीं दिया। पहली कैफियत ये थी, क्या इंसान खुद हो जाता है खुश? नहीं। पहली किस्म के जो लोग हैं ना, अमूमन वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खूब खाते हैं, मोटे हो गए, चिकनाई खाई, दिल का मर्ज लग गया, मिर्चें खाई, मसाला खाया, मैदे की बीमारियां लग गई, बैठे रहे बैठे रहे, फिल्में देखी, गाने सुने, अपने आप को बीमार किया, डेफ हो गए। यानी पहली किस्म के लोग जिस्मानी तौर पर बीमार होंगे। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि दिल की बीमारियों की वजह क्या है, कि मिर्चों वाला खाना, ऑयली खाना, यानी जो चाहो खाओ, नतीजा उसका यह है कि आप बीमार हो जाएंगे। सिगरेट पीने वाले क्या कर रहे हैं भला, ये खुद को खिला रहे, खुद को मार रहे हैं ना, ये खुद को वो नहीं छोड़ सकते। नशा करने वाले कौन है, ये भी वही लोग हैं, इनको नशा चाहिए, चाहे बाद में, इनको पता है हमारा मसला है। आप देखिए ऐसे लोग जब नशा इनका टूटता है या होश में आते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि हमें छोड़ना है हमें इसे, लेकिन जू ही जब उनको फिर क्रेव होती है फिर उस चीज पे पड़ जाते हैं। पहले भी फेल, दूसरे भी फेल। लोग तो कभी खुश ना हुए। वो तो आपने मशहूर कहावत सुनी हुई है ना कि एक बाप और बेटा जा रहे थे, गधा एक ही था, बाप और बेटा दूर थे। अब सवार कैसे हो? बेटे ने कहा अब्बा तुम बैठ जाओ, मैं साथ चलता हूँ। थोड़ी दूर गए तो किसी ने देखा, बातें कहने के, तोबा तोबा, कितना जालिम बाप है, मासूम बच्चा पैदल चल रहा है और अब्बा जी जो है वो घोड़े पे या गधे पे बैठे हैं। ये बात सुन के वो अब्बा जी नीचे उतर आए कि भाई नहीं नहीं लोग मुझे बातें कर रहे हैं। कहा बेटा तू बैठ जा। बेटे को बिठा दिया, पैदल बाप चल रहा है। थोड़ा आगे गए तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा देखो कितना नाफरमान बेटा के बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, तो हम दोनों इसको खुद बैठा। अब क्या हुआ, अब क्या करें? पहले भी बातें हुई, दूसरी दफा फिर बातें हुई। अब उन्होंने क्या कहा, कैसा करते हैं कि हम दोनों ही बैठ जाते हैं। वो बाप भी गधे पे बैठा हुआ था, बेटा भी बैठ गया। थोड़ा दूर गए फिर कोई लोग गुजरे, कहेंगे तोबा तोबा, इतने जालिम मासूम गधा, उसके ऊपर दो लोग बैठे हैं। अच्छा जी, कहा अब क्या करें? कहने लगे और कुछ नहीं, अब हम गधे को उठा लेते हैं, हमने गधे पे जुल्म किया। अब उन्होंने गधे को अपने कंधों पे उठा लिया तो लोग दूसरे से गुजरे, करें कितने बेवकूफ हैं, गधे को अपने सर पे रखा हुआ। तो लोगों का हाल तो यही है, लोग तो आपसे बातें करेंगे, लोग तो आपसे खुश नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कभी खुश नहीं होंगे। एक आखिरी किस्म के लोग, ना वो सेल्फ प्लीजर और ना वो पीपल प्लीजर है, वो कौन है? अल्लाह प्लीजर। उनको पता है कि जो मेरी इस छोटे से वजूद की कीमत लगानी अल्लाह ने है, वो दुनिया की कोई और ताकत नहीं लगा सकती। फिर वो अपने आप को बचाते हैं, फिर वो इस दुनिया में अपनी एक एक चीज को बचाते हैं। उनकी जिंदगी का मरकज और महवर अल्लाह की जात है, नहीं अल्लाह। कोई खुश होता है तो उसका नसीब है, कोई मुझसे खुश नहीं होता तो उसका नसीब है, लेकिन मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा। देखिए तीन किस्म के मामले होते हैं, आप समझ लीजिए। एक वो मामला है कि अल्लाह खुश है, बंदा खुश नहीं है। मिसाल है, अल्लाह ताला बीमारी डाल देता है बंदे पे। एक बंदा कहता है कोई बात नहीं, रजी तो बिल्लाह रब्बम व बिल इस्लामी दीनन, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। यानी एक बंदा अल्लाह की तरफ से किसी मुसीबत के आने पे खुश है, और ये बड़ा आला मुकाम होता है कि बंदा अल्लाह की तरफ से दिए हुए गमों पे भी खुश हो। एक शख्स थे तो उनकी आंखें नहीं थी, ना बीना थे वो बहुत नेक। किसी ने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे तुम इतने नेक हो, अल्लाह से दुआ करके आंखें ले लो। یقین امید ہے کہ اللہ تمہاری دعا نہیں رد کرے گا۔ تو ان کا جملہ بڑا خوبصورت تھا، عربی میں تھا، جس کا خلاصہ کیا ہے، کہنے لگے کہ قدر اللہ احقبو، اللہ کی دیوی تقدیر، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ نا کہ میری آنکھیں نہیں، قدر اللہ احب الیہ، مجھے اللہ کی تقدیر زیادہ پیاری ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی مجھے آنکھوں سے زیادہ یہ بات بڑی پیاری ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں نبینا رہنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے بندہ مومن کی زندگی میں، یہ مقام آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تو چاہتا ہے ٹھیک ہے، فیقتلون فیقتلون، کوئی مزہ تو نہیں آ رہا ہوتا، ہاں جب شہادت کے درجے ملتے ہیں تو اس کو خوشی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن چوٹ تو پڑتی ہے، لیکن بندہ خوش ہے۔ ایک دوسرا معاملہ ہے، بندہ بھی خوش رب بھی خوش، وہ کون سا ہے؟ کہ بندے کو اللہ نے کوئی نعمت دی، بندہ بھی خوش اللہ بھی خوش، نعمت ملی شکر کیا، پہلی چیز میں دکھ ملا صبر کیا، اب اس میں بھی خوش ہے اس میں بھی خوش ہے، لیکن ایک تیسرا معاملہ کبھی ایک ایمان والے کی زندگی میں نہیں آتا، اور وہ کیا کہ بندہ تو خوش ہے لیکن رب کو ناراض کیا۔ یہ ایک کرائیٹیرین لے کے آج یہاں سے اٹھیں گے، جب کوئی خوشی آئے کیا یہ اللہ کو ناراض کر کے مل رہی ہے؟ جب کوئی آپ کی زندگی میں ایسا معاملہ آئے کہ جہاں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوں تو چیک کریں، کس کو سوچ کے فیصلہ کرتی ہوں؟ کیا حقیقت میں اپنے اللہ کے اوپر بات کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کہ ایک انسان مٹی کا، آپ دیکھیں انسان کے جسم میں کتنی گندگی ہے، ایک دن صبح اٹھ کے آپ برش نہ کریں پھر دیکھیے ہماری کیا خوشبوئیں پھیلتی ہیں، ایک دو دن انسان شاور نہ لے، تین دن آپ کپڑے نہ بدلے، خود سے بو آنے لگتی ہے، اکڑتا کتنا انسان۔ جب ایک انسان اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے، تو کیا آپ بتائیے کہ اس کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ یہ آیت ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو ہر صورت میں نبھانا۔ یہ میں نے صرف وقت کی مطابقت سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی، الحمدللہ ان آیات پہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پورا درس بھی موجود ہے، اور ویسے آپ چاہیں تو سبیل الجنہ میں اس کی تفسیر سننا چاہیں، بہت ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، آج ہمیں اللہ دکھتا نہیں ہے نا، لیسٹ پرائورٹی ہمارے لیے اللہ کی ذات ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہوں اور کوئی ایک بندہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے معمولات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ بعض دفعہ گھر میں صرف ایک مہمان آتا ہے اور پورا گھر اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی ذات جو ہماری تنہائیوں میں بھی ہمیں دیکھتی ہے، جو ہمارے دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتی ہے، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ نے جو ہم سے سودا کیا ہے ہم اس میں کامیاب ہوں، نقصان ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کتنی اس کی خوشی، کتنا اس کا بڑا حلم ہے کہ خود سب کچھ دے کے کہا آپ میں تم سے لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نہ تو ہم اپنے ہاتھوں میں بکیں، نہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں بکیں، بلکہ اللہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں بیچ لے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے کہا ابراہیم جھک جا، مسلمان ہو جا، متی ہو جا، کہا اچھا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نو کا لفظ نہیں تھا، ہینڈز اپ، جو کہہ دیا چل پڑے، نہ سوچا، نہ عقل سے پوچھا، نہ ایفس اینڈ بٹس میں پڑے کیا ہوگا کیسے ہوگا، نہ انہوں نے کوئی اس کے فائدے اور نقصان دیے۔ ہمارا حال کیا کہ جب ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم فوراً اس کے پلس اینڈ نیگیٹو میں پہنچ جاتے ہیں، یس اگر یہ کیا تو یہ، یہ کیا تو وہ، اچھا اس طرح ہوگا تو اس سے یہ فائدہ، اس طرح کیا تو یہ نقصان، یہ نہیں سوچنا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے لبے جوئے بام، ابھی عقل ابھی حیران کھڑی تھی کہ کودوں کہ نہ کودوں۔ تو یاد رکھیے جو لوگ نیکیوں کے معاملے میں سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں کہ کروں نہ کروں، تو اصل میں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں روک لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ کوئی بات، کوئی سوال، کوئی شیئرنگ، کچھ آپ لوگوں کی طرف سے انپوٹ ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے اس ماحول کے مطابق اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی بات، کیا سیکھا آپ نے اس کو شیئر کیجیے۔ جی اماما، what did you learn?
No matter what you do, others will always find something bad on you. The only way...
Yani you can't please people. لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، अकेला के नबी, मेरा दिल करता है सब लोग मुझे पसंद करें, जैसे आई विल बी द मोस्ट बिलवड पर्सन, तो क्या करूं? अब हमें कोई पूछे तो हम कहेंगे अच्छा तुम उनको खूब तोहफे दिया करो, फिर तुम उनको खाना खिलाओ, ये करो, हम यही सोचते हैं ना, यू विल केयर मोर अबाउट देम। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा अगर तुम ये चाहते हो तो लोगों से बेनियाज हो जाओ, जो लोगों के पास है उसकी तरफ देखो भी ना, और जो अल्लाह के पास है उसकी तरफ अपनी नजर लगा दो। जी और कोई इधर से? जी आपने क्या सीखा अम्मा जी? किसी के हाथ ना बिको, हम कहाँ बिके हुए भला, किसके हाथ है कुछ अंदाजा है? यकीन करें हम इतना बिकते हैं, इतना बिकते हैं। अभी मैं यहाँ आने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान भी थी और डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, मुझे तो पूरी दुनिया में एक ही कल्चर दिख रहा है मुसलमानों का आज के दौर में। यानी जो आज हमारी एक शादी का हाल अगर कोई सुन ले, हमें पता नहीं यहाँ तो आपको मुश्किल ही होगी, बाहर के मुल्कों में तो शादियां बड़ी आसान और बड़ी, मेरा ख्याल है कि उन प्रोटोकॉल से आजाद है जो बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पहुंचता है। यानी हद खत्म हो जाती है ना, जिसको कहते हैं हद खत्म हो जाती है। एक शादी लाखों से निकलकर अब करोड़ों में जा चुकी है, दुल्हन का एक जोड़ा चंद हजार की बजाय 3 लाख रुपए का जोड़ा, कैन यू बिलीव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और पहन के उसको कुछ नहीं पता लगता। ये एक औसत दर्जे की बातें कर रहे हैं, तो आप बताइए कि उसके बाद होता क्या, खुशी कितनी मिलती है? जितनी शादियां आज हो के टूट रही हैं, कभी इतनी टूटी? अगर आप लोगों को अच्छे खाने खिला के, दावतें खिला के बेटियों के लिए खुशियां ढूंढ सकते तो बताइए कि क्या ये सब कुछ आज सबको गारंटी ना मिल चुकी होती? ये तो बीबी फातिमा कभी ना बसती। लोग कहते जिस शादी में लाड और चाव ना करो वो शादी बसती नहीं है, वो तो मनहूसियत हो गई कि आपने चाव नहीं किए। तो फिर ये सारे जो नबी सल्लम के घराने बसे, जो उनमें एक हकीकी प्यार हुआ, ये क्या झूठ है? तो ये सब चीजें सिर्फ अगर आज आप एक चीज सोच के उठे ना कि मैंने लोगों के हाथों नहीं बिकना। जब आपकी जिंदगी में कोई फैसला आए, अपना जाती छोटा बड़ा कुछ भी, यकीन करें बाज दफा हम अल्लाह की दीन की खिदमत भी करना चाहते हैं, लोगों के डर से पीछे हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी जकड़बंदियों से हम आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई और अपनी खुशी से कुछ कहना चाहे? जी आप आजाद हो जाएंगे जब बिके।
हम कुछ और लाए हो नहीं लाए, लेकिन हम कल्चर साथ लेकर आए और हम अभी तक वही हैं जो वहां थे, बल्कि हम ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमको दो कल्चर को लेके चल जाएंगे।
अब हमने दोनों की ले लिए
और दोनों की खराबी ले जाएंगे, यहाँ के कल्चर की भी और वहां के कल्चर की।
सही बात है, बस वही बात है ना कि हमारा अपना तशख्स नहीं बना, हमने वो सीखा ही नहीं है। यकीन करें आप सबको कहूंगी कि एक बार जरूर सीरत पढ़े, अगर अभी तक आप बाज़ाब्ता तौर पे नहीं पढ़ चुके। अभी आने से पहले एक रबी लवल के पूरे महीने में हर दिन डिफरेंट क्लासेस में 3-4 दफा दिन में किसी ना किसी नाते से सीरत पढ़ी है, पढ़ाई है, कभी उसके वाकयात, कभी जंगे नबी सल्लम की। यकीन करें कि ऐसे लगते हैं कि हमारी जिंदगी नबी सल्लम की जिंदगी से कोसों दूर है, कोई वेवलेंथ नहीं मिलती दिखती, कोई आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं दिखती। और जो हमारी नस्लें, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको उनके ऊपर गौर करना है। कुछ ना कुछ तो असर हम पे आता है, लेकिन जब हमारे बच्चों पे बाहर इतना पीयर प्रेशर है, हमारे नबी के खिलाफ लोग बातें करते हैं, लोगों ने उनको एक किस्म का बहुत ही ज्यादा उनके किरदार खुशी की कोशिश की, तो अगर हम खुद अपने बच्चों को अपने अमल के साथ ये नहीं दिखाएंगे कि अल्लाह के नबी ने कैसी जिंदगी बसर की और वो कैसे थे, तो आप बताइए कि कल क्या होगा। एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी जनरेशन पे जाइए, क्या दिखता है हमें? शऊर की जरूरत है। आज की माँ अगर चलेगी, अब ये सिर्फ कुरान की एक आयत का मैंने सिर्फ आपको, मैंने अपने दिल से कोई बात बस ऐसे ही की है बात के जो आपको बात समझ आ जाए, मैंने ना इसकी तफसीर की है ना मैंने इस पे दर्स किया, सिर्फ एक मिसाल शेयर की है आपके साथ। अगर आप सब साथी, अगर आप सब कहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इससे भी ज्यादा इसको बारीकी से समझते होंगे, लेकिन अगर अभी तक ये कुरान आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं आया कि आप अरबिक में पढ़ें और आपको उर्दू में समझ आए, तो मैं आपको दावत दूंगी, एक दफा डू इट। ये जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, हमारे पास इतनी थोड़ी जिंदगी है कि हम अब जन्नत में चले भी गए, हम ख्वाहिश भी करेंगे कि अल्लाह हमें एक दफा ये कुरान पढ़ना है, इसको समझना है, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दुनिया की बहुत खूबसूरत और मीठी चीज हम मिस किए हुए अगर हम अरबी के कुरान को उर्दू में नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक क्लास होती है जो हमारे कोर्स के बाद, यानी एक सबीलुल जन्ना कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्स है नूरुला नूर, तो उसमें हम लोग खुलासे कुरान करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल भी रात को वहां नॉर्वे में करवा रही हूँ, तो 23वें पारे का आखिरी रूप करवाया। एक रूप हिस्सा हम एक क्लास में करते हैं, बिल्कुल मेरे सामने सादा अरबी का कुरान होता है। हमारे स्टूडेंट्स को भी इजाजत नहीं उस वक्त दूसरे कुरान की, और मैं उसको उर्दू में पढ़ रही होती हूँ और वो सब सुन रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि कुरान हमारे अपने ऊपर नाजिल हो रहा है। तर्जुमों को क्या करना है, तफसीर को क्या करना है, जब तक मुझे अरबी का कुरान उर्दू में नहीं समझ आएगा मैं कैसे उसको समझूंगी। अब मैं उर्दू में बोल रही हूँ, और अगर आपको मेरे हर जुमले को पहले डिक्शनरी में देखना पड़ता, इसका ट्रांसलेशन करना होता, तो क्या आप इस बात को इतने गौर से सुनते जो आपने सुना। तो जब मेरे जैसे एक इंसान, आम इंसान जो आप ही जैसा है, उसकी बात को आप सुन रहे हैं तो फिर समझ रहे हैं, तो खालिक की बात को हम क्यों ना समझें। 10 कुरान भी अगर आपके घर में तर्जमे वाले हैं, 10 तफसीरें भी आपके पास कैसेट्स में, ऑडियोज में, जिसमें मौजूद हैं, लेकिन अगर आप खुद अल्लाह के कलाम को डायरेक्ट नहीं समझते, तो याद रखिए कि ये कुरान आपके दिल पे नहीं उतरेगा। आपको याद होगा एक वाक्या, एक जगह दर्स में भी सुनाया था, कि एक शख्स फैसल एक दफा इलाज के सिलसिले में यूके के किसी मुल्क में गए थे, तो वहां का जो बड़ा था वो उनको मिलने आया, गालिबन मॉरिस बुकाई था या कोई और था, तो उन्होंने उससे कहा कि कुरान के बारे में कुछ कुकोशुभात के। कहने लगा मैंने कुरान कितनी दफा पढ़ा, उसमें तो ये और वो है। तो उन्होंने कहा कि क्या तूने कुरान अरबी में पढ़ा है? कहा नहीं, मैंने ऑफकोर्स इंग्लिश में पढ़ा है। कहा नहीं, जा इसको अरबी में पढ़। इस ख्याल से उन्होंने अरबी कुरान में पढ़ना शुरू किया, और कुरान पूरा ना हुआ इससे पहले उन्होंने शहादा दे दी और मुस्लिम हो गए। इसका एक असर है, इसकी एक तासीर है। अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास, सच बताएं सर से पांव तक जो नेमतें इस वक्त हमारे पास है, क्या हम डिजर्व करते हैं? एक पैनी, एक बिल हमने उसका दिया। आज बिजली भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल आएगा, गैस भी, हम बिजली पानी हर चीज का बिल आता है ना, क्या अल्लाह की नेमतों का कोई बिल आ रहा है? तो क्या हम उसके बाद इतने ना शुक्रे, इतने नमक हराम हो जाए कि अल्लाह ताला से कभी पूछे भी ना कि अल्लाह हमें क्या करना है? अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर रिफरा, आपका, आपने हमें एक मौका दिया, और आप सब साथियों का भी, कि जिन लोगों के आने की वजह से हमारी आज की महफिल सजी, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم استر عوراتنا وعمر رواتنا، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس، ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرما. या अल्लाह हमारे यहाँ बैठने का, बात सुनने का, सुनाने का या अल्लाह बेहतरीन असर हमारी जिंदगी में लेके आ। या अल्लाह इन सब बहनों का आना, बैठना, सुनना कबूल फरमा, इनके दिलों की नेक हाजात को अपनी रहमत से पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी इस बहन का अपने घर को खोलना, ये महफिल सजाना, इसमें जो भी इनको मुशक्कत हुई, या अल्लाह उसका इनको बेहिसाब अजर अता फरमा। या अल्लाह जिसने भी इस सारे सिलसिले में एक लफ्ज से भी मदद की, या अल्लाह उसको भी इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को सेहत और आफियत दे दे। या अल्लाह अपने दीन के लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी इताअत के लिए, या अल्लाह हमें सेहत और आफियत दे। या अल्लाह अब तो जीना आया, अब तो जिंदगी का मकसद समझ आया। या अल्लाह अगर अब हम दुनिया से जाए, या अल्लाह अगर अब बीमारियां हमें घेर लें, या अल्लाह हमने वो सारी जिंदगी जाया कर दी जिसमें हमने बहुत कुछ करना था, तो या अल्लाह हमें आफियत दे, तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे वो रिश्तेदार जो तेरे पास चले गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके वहाँ दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे साथियों में, दीनी साथियों में, हमारे रिश्तेदार अजीज व अकारिब में जो तेरे पास चले गए, उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह उनकी जिंदगियों में आफियत में और सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं का ये खजाना हमसे जुदा न करना। या अल्लाह माँ बाप तो दुआओं की पोटली बन जाते हैं, या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की दुआएं लेने वाला बना, उनकी दुआएं हमारे हक में लगा। या अल्लाह हमें उनका और उनको हमारा कोई गम न दिखाना। या अल्लाह हमें उनकी कदर की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे शोहर और उनके माँ बाप की भी हिफाजत फरमा, उनके भाई बहनों की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे उस्तादों पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह जिन्होंने एक लफ्ज़ भी सिखाया, या अल्लाह हमें उनकी बेहतरीन कदरदानी करने वाला बना। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, जो जिंदा है उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे दीनी साथियों पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह कुरान पाक के तालिब इल्मों पे अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह ऑनलाइन ऑन साइट यहाँ वहाँ जहाँ भी या अल्लाह दुनिया में जो तेरे दीन की खिदमत कर रहा है, या अल्लाह जो इस सिलसिले में मददगार और मुआविन है, या अल्लाह तो उसको बेहतरीन रहमत फरमा उस पर। या अल्लाह यहाँ जिसने भी जो दिल में सोचा हुआ है और हमें कह सके या नहीं कह सके, या अल्लाह तो बिजाति सुदूर होते हुए उनकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ बिन ब्याही बैठी उनको नेक जोड़ अता फरमा। जिनके बेटे बिन ब्याहे हैं या अल्लाह उनको भी नेक जोड़ अता फरमा। या अल्लाह जो शोहर बीवी एक दूसरे से परेशान है, या अल्लाह उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उल्फत डाल दे। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी बच्ची ने जो अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, या अल्लाह इसको बरकतों वाला रखना। या अल्लाह इस जोड़े को जन्नत तक का साथी रखना, ये रास्ते में टूटने वाले साथ ना बने। और या अल्लाह सिर्फ दुनिया की खुशियों में न खो जाएं, बल्कि इतनी नेकियां करें कि ये जन्नत तक में जा सकें। या अल्लाह इनको अपना मति और फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल को या अल्लाह एक मकसद दे। या अल्लाह हम इकरार करते हैं हमने अपने बच्चों को वो मकसद नहीं दिया जो हमें देना था। या अल्लाह हमने उनकी तरबियत में कमी की, या अल्लाह इसलिए कि हम तो अभी खुद भी भटक रहे हैं। हमें तो आज तक खुद नहीं पता कि नेकी के नाम पे क्या करना है। या अल्लाह हमें उम्मती बना। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अता फरमा। या अल्लाह हमारी जात को बेकार चीजों में न जाया करना। या अल्लाह बे मकसद नहीं बा मकसद काम करने वाला बना। या अल्लाह हमें दीन का काम इस तरह करने वाला बना जैसे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। या अल्लाह इस दीन को लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दे। या अल्लाह इसको लोगों के जहनों पे उनके दिलों पे डाल दे। या अल्लाह हमें इस दीन इस्लाम को बिल्कुल आखिरी चॉइस पे न रखना। या अल्लाह हम अपने दुनिया के मामले जिस तरह करते हैं, हमें दीन के मामले भी उसी तरह करने वाला बना। या अल्लाह दीन के नाम पे हमें परफेक्शनिस्ट बना दे। या अल्लाह हम जरा सी कम चीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। या अल्लाह हमारी कमियों को कोताहियों को माफ फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.